का के लिए मैं दीपक डोभाल।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। सदर बराक ओबामा ने कहा है कि अमरीका भारत का बेहतरीन शराकतदार बन सकता है। उन्होंने ये बात भारत के अपने तारीखी दौरे में खिताब के दौरान कही और दोनों मुल्कों पर जोर दिया कि वो गुर्बत, माहौलियाती तब्दीली और अदम बर्दाश्त के खिलाफ जंग के लिए इकट्ठे काम करें। नई दिल्ली से वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा एंजना पसरीचा की एक रिपोर्ट, नीलोफर मुगल की ज़बानी।
भारत के वजीर आजम और ताजिर लीडरों से मुलाकातों के तकरीबन 3 दिन के बाद मंगल के रोज सदर बराक ओबामा ने अमरीका और भारत के ताल्लुकात में नए बाब के आगाज का पैगाम भारतीय अवाम को भी पहुंचाया। उनके अल्फाज हैं,
But I'm here because I'm absolutely convinced that both our peoples will have more jobs and opportunity and our nations will be more
वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर कायल हूँ कि हमारे मुल्कों के लोगों को मजीद रोजगार मिलेंगे और मजीद मौके दस्तयाब होंगे, हमारी कौमें मजीद महफूज होंगी और जब दो जमहूरी कुवतें इकट्ठे खड़ी होंगी तो दुनिया ज्यादा महफूज होगी। ये थे सदर बराक ओबामा के अल्फाज। उन्होंने ये बयान पीर के रोज भारत के योम जमहूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करने के एक रोज बाद मंगल के रोज दिया। वो पहले अमरीकी सदर हैं जो इस तकरीब में शरीक हुए। मंगल के रोज नई दिल्ली की सिरी फोर्ट में तकरीबन 1,500 सामईन से खिताब करते हुए मिस्टर ओबामा ने कहा कि इकट्ठे होकर अमरीका और भारत लोगों की जिंदगियां बेहतर बना सकते हैं और काबिले तजदीद तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करके और तिजारत बढ़ाकर गुर्बत दूर कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि हकीकी आलमी शराकतदार होने के लिए दोनों मुल्कों को माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ कोशिशों की क्यादत करनी चाहिए। अमरीका और भारत चीन के बाद दुनिया के सबसे बड़े आलूदगी फैलाने वाले मुल्क हैं। इतवार के रोज मुजाकरात में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो गैसों के अखराज में आलमी सतह पर कमी के लिए सदर बराक ओबामा के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं और वो इस जिम्न में दिसंबर में अक्वा मुतहिदा की माहौलियाती उमूर से मुतालिक सरबरा इजलास में भी शिरकत करेंगे। मंगल के रोज मिस्टर ओबामा ने इस बात का एतराफ किया कि भारत जैसी उभरती हुई मईशत से ये कहना बहुत गैर मुनसिफाना दिखाई दे सकता है कि वो फॉसिल फ्यूल पर इनेसार कम करे। वो कह रहे हैं कि सच्चाई ये है कि हत्ता कि अमरीका जैसे ममालिक भी गैसों के अखराज में कमी करें या उभरती हुई मईशतें जैसे भारत जिसे बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत है साफ तवानाई तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ खड़े होने के लिए मौका दस्तयाब है। मंगल के रोज भारत में आखिरी बयानात में सदर बराक ओबामा ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और बराबरी को फरोग देने पर जोर दिया। उन्होंने खवातीन के हकूक पर भी बात की और कहा कि अगर कौमें हकीकत में खुशहाली की ख्वाहां हैं तो वो अपनी निसफ आबादी के हुनर को नजरअंदाज नहीं कर सकती। 2 साल कबल नई दिल्ली की एक बस में नौजवान खातून के साथ जिंसी ज्यादती और कत्ल ने पूरे मुल्क को झंझोड़ दिया था जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। सदर बराक ओबामा के अल्फाज हैं, वो कह रहे हैं कि हर लड़की की जिंदगी अहमियत रखती है, हर बेटी वही कुछ हासिल करने का हक रखती है जो मौके बेटों को दस्तयाब हैं और हर खातून को सड़कों पर चलने, बस में सफर करने और महफूज महसूस करने का हक हासिल होना चाहिए और उसके साथ भी इज्जत और एहतराम का सलूक किया जाना चाहिए जिसका वो हक रखती है। अमरीका के सदर ने मजहबी अदम बर्दाश्त के खिलाफ भी बात की। उनका कहना था कि हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपने अकीदे पर अमल करे जिसका वो इंतखाब करता है और बगैर किसी सजा और खौफ के आजादी से ऐसा करे। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
सदर बराक ओबामा और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान तय पाने वाले माहिदों की अहमियत और खित्ते पर उसके असरात पर हमारी साथी शहनाज नफीस ने प्रोग्राम द न्यूज में भारत से एक साबिक सिफारतकार मिस्टर रंगाचारी, अमरीका से डॉक्टर रोहेल और पाकिस्तान से ब्रिगेडियर मोहम्मद साद से गुफ्तगू की। उनकी रिपोर्ट।
जहां तक सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सवाल है, मैं समझता हूं कि अगर आप हिन्दुस्तान की आज इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी देखें तो वो है 234 जीगावाट। उसमें जो न्यूक्लियर पावर है वो सिर्फ 5000 मेगावाट है। तो न्यूक्लियर पावर आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत ही छोटा रोल प्ले करता है जहां तक कि एनर्जी का सवाल है, और हिंदुस्तान के तरक्की में पावर जनरेशन बहुत ही अहम है। और अगले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह लगाने में कम से कम 8 से 10 साल लग जाते हैं। अब 8 से 10 साल इंतजार करना मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आज से ही शुरू करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो अहमियत है, वो ज्यादा पॉलिटिकल लेवल पे, सिंबॉलिक लेवल पे देखना चाहिए, ना कि इस लिहाज से कि कल सुबह से ही जैसे कई एटॉमिक पावर प्लांट वगैरह जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हिंदुस्तान में लग जाएंगे और उसकी वजह से हिंदुस्तान की एनर्जी सिचुएशन जो है तब्दील हो जाएगी। उसमें एक चीज, दूसरी और चीज इसमें जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जो टारगेट सोलर पावर के लिए रखा गया है वो 2022 तक के 100 गीगावाट का, यानी कि आज 234 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसके बनिस्बत यहाँ पर 100 गीगावाट है वो सोलर एनर्जी से होगा। तो अगर न्यूक्लियर एनर्जी और इसका सोलर एनर्जी का कंपैरिजन करें तो सोलर एनर्जी ज्यादा काफी अहम होगा। तो इसलिए इसका सिंबॉलिक और पॉलिटिकल लेवल पे ज्यादा अहम होगा जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे दोनों सरकारों के बीच में जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई है। यहाँ तक कि डिफेंस का सवाल है कि ड्रोन वगैरह जिसकी आपने बात की है, इस तरह की टेक्नोलॉजी तो आज कोई मतलब नई चीज नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी कंपनी जो है ये इस तरह की चीजें बना रही है। इसमें भी मैं समझता हूँ कि ज्यादा सिम्बोलिज्म के हिसाब से देखना चाहिए कि आज अमेरिका जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान को वेपन्स टेक्नोलॉजी वगैरह जॉइंट प्रोडक्शन इन सब चीजों में बातचीत करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रोजेक्ट जो है वाकई में कार्यान्वित भी हो जाए, मतलब कि इम्प्लीमेंट भी हो जाए।
और डॉक्टर ताहिर रुहेल, अमेरिका की जो जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है इसमें भारत की क्या और कितनी अहमियत है?
ये जो खत्ता है दुनिया का, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़ गई है। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को महफूज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसको उसमें हर मुल्क के अपने अपने मफादात हैं, उनके तहफ्फुज़ के लिए अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो डिफेंस पॉलिसी है उस पे इस इलाके पे उसी लिहाज से ज्यादा जोर दिया जा रहा है जिस लिहाज से ये इलाका मुआशी तौर पे, फाइनेंस के तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे और एज अ कंज्यूमर यानी अमेरिका और वेस्ट की चीजों के खरीदार के तौर पे इस तरह से ये इलाका सामने आ रहा है। चूंकि इंडियन इकॉनमी बहुत डेवलप कर गई है और ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मैंने जिक्र किया उसमें इंडिया की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो बुनियादी तौर पर इंटरनेट की वजह से हुई है। और इसमें मैं साथ ये भी कहता जाऊं कि पाकिस्तान भी उसी सफ में आ सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ये पिछले 20-30 सालों की इंटरनेट से रिलेटेड एक्टिविटी को मिस किया।
ब्रिगेडियर मोहम्मद साद साहब, आप ये बताइएगा कि सदर ओबामा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिन माहिदों पर उन्होंने दस्तखत किए हैं उसके खिते पर आप क्या असरात देखते हैं?
जो हिंद है वो उनके लिए एक मजबूत मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, बड़ा मुल्क है जो चीन के साथ मुकाबला कर सकता है। अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे वो बड़ा मौजूद मुल्क है इस इलाके में, जो उसका खासकर महल वकू है उसकी वजह से। लेकिन कहाँ तक ये हिंदुस्तान जो है वो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि वो चीन के साथ इस वक्त उसकी बड़ी बहुत बड़ी तजारती वो है, ताल्लुक है चीन के साथ, और आया वो ये कर सकेगा जो अमेरिका उससे मतलब मुतालबा करेगा कि क्या वो चीन के साथ इतना आगे तक जाएगा कि ये उसके साथ राइवलरी इतनी बढ़ जाए कि वो उसके बाकी जो सियासी और तजारती ताल्लुकात है उसके ऊपर असरअंदाज होने शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में एक अलायंस तो बन रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में हिंद उसमें इतना सरगर्म रुकन नहीं होगा जितना मतलब है कि जापान या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये ममालिक जो है जिस तरह की दिलचस्पी वो रखते हैं इसमें। बाकी पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात क्या है, मेरे ख्याल में एटमी मुआहदा है उसकी फौजी, उसके ऊपर असरात इतने ज्यादा नहीं होंगे।
मंगल को चंद नामालूम मुसल्ला अफराद ने क्वेटा के मुजफ्फरात में 5 कानकनों को अगवा कर लिया। क्वेटा से सत्तार काकड़ की रिपोर्ट।
پاکستان کے صبح